मैं कुछ हफ्ता पहले एक बहन के साथ थी जो दादी के बिल्कुल समीप में है, अभी उनकी सेवा में हाजिर हैं, दीपा बहन पार्ला के। सुना रहे थे, कहा डॉक्टर्स जब दादी को देखने के लिए आते हैं, एक मुस्लिम डॉक्टर है बहुत बड़ा जो दादी को रोज देखने आता है, दादी को देख करके कहता है ये अल्लाहदीन का चिराग है। कहते हैं हमने स्पिरिचुअलिटी को ऐसे तो नहीं डीपली स्टडी किया है, पर इन्हों को देख करके कुछ विशेष लगता है, ऐसे लगता है जैसे कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है। तो कहां से यात्रा शुरू होती और कहां जाकर के वहां वेंटिलेटर में भी दादी को दे रहे हैं, परंतु सिडेट नहीं करना पड़ता है। आप देखो कैसी अवस्था होगी देहभान से परे की, नहीं तो सिडेट के बिना कहते वेंटिलेटर पे चढ़ाना मुश्किल है, लेकिन दादी तो है ही नहीं जैसे वहां पर, देह से बिल्कुल न्यारी है। तो 21 बातें 21 जन्मों की बादशाही लेने के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा कुछ प्रश्नोत्तर भाई के साथ, प्रश्नोत्तर भी से भी ज्यादा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। माताएं कल बहुत लकी थी, उनको 1.5 घंटा भाई का व्यक्तिगत अनुभव सुनने को मिला। वो ऐसा अनुभव था जिससे मैं समझती हर एक के जीवन में खूब तीव्र पुरुषार्थ का एक संकल्प आया, परंतु वो अनुभव दोबारा अगले दिन ही सुनाना, कई बार उसमें वो फीलिंग्स नहीं रहती हैं। परंतु प्रश्नोत्तर के माध्यम से कुछ एक बातें उनके व्यक्तिगत अनुभव व्यक्तिगत पुरुषार्थ की हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले छतरी में अभी 5:30 से 6:30 मुरली भी चलेगी, अव्यक्त मुरली, जो माताएं पीछे बैठी हुई हैं। आप सबने आज की मुरली सुनी है, अव्यक्त मुरली सब, नहीं तो जिनों की भी बाकी है और मुरली सुनना चाहते हैं तो आप छतरी में मुरली सुन सकते हैं। फिर 6:30 से 7:30 इंटरनेशनल योग रहेगा। सबसे पहले तो भाई का जिन्होंने कल अनुभव सुना और जिन्हों को नहीं भी पता, आप लंबा समय से बाबा को ढूंढ रहे थे, भक्ति की आपकी एक लंबी यात्रा थी, ऐसा भक्त तो कोई नहीं देखा। मुझे नहीं लगता आपने कोई भी मठ या पंथ छोड़ा होगा, आपने लिस्ट बनाई थी मठ पंथ की, उसमें से डिसाइड करने के लिए कि किसमें रहने जाना है, वो लिस्ट ही अपने आप में 50 की थी। इतने गुरु, इतने मठ पंथ, इतना लिटरेचर, कोई धर्म का लिटरेचर ऐसा नहीं था जो आपने नहीं पढ़ा है। इतना सब कुछ पढ़ा देखा, गुरु सन्यासी लीडर्स, बाइबल कुरान भागवत शास्त्र सब कुछ, फिर आप मधुबन में आए, बाबा मिलन में बैठे और आपको लगा यही है। ऐसी क्या बात थी जो आपको लगा यही है? भगवान दिखाई नहीं देता है, सब कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कैसे आइडेंटिफाई किया और कहा नहीं यही है? कैसे आपको पता चला?
कठिन प्रश्न है। हमने अपने पिताजी से कहा था कि मुझे मत रोको, यदि भगवान स्वयं आकर मुझे रोकेगा तो ही मैं रुकूंगा। और वहां बैठे बैठे ये अनुभव हुआ कि मैं रुक गया हूं और मुझे रोकने वाला कोई भी देहधारी हो ही नहीं सकता। कोई भी मनुष्य में इतनी शक्ति ही नहीं है कि जिस आवेश और जिस जोश में हम थे, उस वो जो फ्लो था भयंकर वैराग का, उसको रोकने की पावर किसी और में नहीं है। और ये अनुभव हुआ कि किसी ने मुझे बस वहीं बैठे बैठे रोक दिया। वो जो माइंड 9 months, वो रेस्टलेसनेस, वो बेचैनी, वो तीव्र लगन जो थी उसको पाने की, वो एकदम से जैसे शांत हो गई और समाप्त हो गई और हम स्थिर हो गए। एक तो ये बात, और दूसरी बात इतना लंबा समय तक हम कभी अशरीरी हुए नहीं थे, होते थे भक्ति मार्ग में, उस सत्संगों में, इस सत्संग में, पर जो 3-3:30 बजे से अशरीरी और सीधा 10:30-11 बजे तक, वैसा कभी नहीं हुआ था। और प्यास से जो थी, जिसके लिए वो थी, वही सामने था, तो प्यास तो भरनी ही थी, मिटनी ही थी, क्योंकि उसको ही पाने के लिए सब कुछ, जैसे कुछ भी नहीं चाहिए था यहाँ का, न पढ़ाई, न यहाँ के कुछ, कोई भी बात, और वही सामने था। तो ये कुछ उत्तर हो सकते हैं, सत्य कुछ और ही होगा जो अवर्णनीय है, अनस्पीकेबल, जिसको बताया नहीं जा सकता है, और या फिर हमें ही पता नहीं अभी तक वो क्या है।
कभी ऐसे बैठते हैं तो वो फीलिंग स्मृति में आ जाती है।
हाँ, बहुत बार।
और वो कुछ कहती है,
या फिर वो इस रूप में है अभी कि जैसे हमने ढूंढा और हमने पाया, अब हमें मदद करनी है दूसरों को ढूंढने में और वो पा ले। ये भावना कि जो प्यास हमने थी, वैसी ही प्यास कितनों में होगी, कितने ही ढूंढ रहे होंगे, और वो कैसे पहुंचेंगे। तो हम ये जो सेवा है वाणी की, वो बहुत छोटा है ये, या जो स्थूल है एज अ डॉक्टर, वो उससे भी छोटा है। मुख्य जो सेवा है वो एक ही है, मन से, संकल्पों से आत्माओं को आकर्षित करना, मन से, प्यूरिटी से आत्माओं को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करना, प्रभु प्रेम की तरफ आकर्षित करना। ये सेवा ही एकमात्र सेवा जो हम सोचते हैं वर्तमान समय हम कर रहे हैं।
जो आप कल बता रहे थे कि आप वहां पर एक ब्रेक आपने लिया था, क्योंकि वहां से आगे आप सन्यास के लिए जा रहे थे, कहां जा रहे थे? वहां से घर छोड़ चुके थे, चेन्नई में जा रहे थे, छोड़ दिया था सब कुछ, तैयारी हो चुकी थी, चेन्नई में जाकर के बस रहने वाले थे, चूज कर लिया था कौन सा मठ पंथ है, रहा चलते ब्राह्मण। तो बाबा ऐसे ही अचानक फंसाता है। कल हम बात कर रहे थे, आपने एक बात कही, कहा एक सचिन भाई है जिसको लोग डॉक्टर के रूप में देखते हैं, एक सचिन भाई है जिसको लोग सेवा की फील्ड में देखते हैं, एक और है जो गुप्त है। जरा उस गुप्त सचिन भाई की एक झलक दिखाना।
गुप्त को गुप्त ही रखना चाहिए।
तो गुप्त पुरुषार्थी बता दें।
एनोनिमिटी।
अज्ञात
रहना, अनजान रहना, वही पुरुषार्थ है। अननोन रहना, अपरिचित रहना, यही पुरुषार्थ है।
इसको थोड़ा स्पष्ट तो करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि नहीं, ये आर्ट टू आर्ट कॉन्वर्सेशन।
आपकी प्रश्न टफ है।
आप महातपस्वी यहां बैठे हैं। चलो ऐसा करते हैं, फिर जब आप कुछ मास बाद वापस आएंगे ना, डेट फाइनल कर ले,
बताएंगे।
बाबा आपको विशेष इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। हर एक का कुछ ना कुछ रोल होता है, और बाबा, हम समझते हैं कार्य बाबा का है और आप निमित्त हैं, बाबा ने आपको निमित्त बनाया है कुछ विशेष कार्य के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है, आप में कौन सी ऐसी एक या दो विशेषता है जिसके लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया?
प्यास और परमात्मा प्रेम, बस इसके अतिरिक्त और कोई विशेषता नहीं। बर्निंग डिजायर टू लव हिम, बर्निंग डिजायर दैट द होल वर्ल्ड शुड लव हिम, अ बर्निंग डिजायर दैट ईच एंड एवरी सोल ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ शुड डिवोट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द सुप्रीम। वो इच्छा इतनी ज्यादा तीव्र है कि सब आत्माएं उस एक की याद में खो जाए। ये एक इच्छा हमको बचपन से रही है, बचपन से जब हमें ये ज्ञान तो दूर, वो भक्ति का भी ज्ञान पता नहीं था। हमको याद है हम जब बहुत छोटे थे तो मराठी का एक गीत सुना था, बलसागर भारत हो विश्वात शोभुनी राहो, हे कण कण करी बांधी अडे जनसेवे जीवन दिदले। हे जीवन ना तरी व्यर्थ मी सिद्ध मराया लाहो बलसागर भारत हो। सुना होगा ये गीत, ये भारत बल का सागर बन जाए। ये जीवन वैसे भी व्यर्थ है मी सिद्धम राया दाहो, कुछ तो करके मैं जाऊंगा वैभवी देश चढ़वीन सर्वस्व त्यास अर्पीन। ये गीत हमको तो अभी पता है, तब तो केवल ये दो या तीन लाइन उसकी पता थी, पर वो इतनी छोटी आयु में हमने सुन लिया था, सर्वस्व त्यास अर्पीन अपना संपूर्ण जीवन इस देश के लिए, देव धर्म आणि देशासाठी प्राण घेतला हाती, शूर आम्ही सरदार माला काय कोणाची भीती, देव देश और धर्म इसके लिए जीवन को अर्पण कर देंगे। तो वो जो भाव था कि इस देश क्या है वो पता नहीं था, राष्ट्र क्या है पता नहीं था, परंतु उसमें जो त्याग की भावना थी उस गीत में कि सब कुछ स्वाह कर देना है, बस ये एक था बचपन से।
क्योंकि सच
नाम से किसी ने पूछे नहीं इतने टफ आज तक। आपने बहुत सोच के लाए हैं सर।
क्योंकि सचिन भाई का जो रूप सभी देखते हैं यूट्यूब या आदि पे, वो ऐसा लगता है कि बहुत बुद्धिजीवी है, लेकिन एक और रूप है जिसमें जो उन्होंने कहा फाउंडेशन में, और वो मुझे अपेक्षा थी वही होगा, परमात्म प्रेम। वो बुद्धि भी इतनी डिवाइन इसीलिए शायद बनी है क्योंकि उसकी फाउंडेशन में बहुत ज्यादा डिवाइन लव है, और उस परमात्म प्रेम में आपने हजारों ही कविताएं लिखी हैं। ये तो आपने किसी और की सुनाई, अभी एक कविता जो आपने लिखी है। हजारों, हमने सिर्फ क्लासेस सुनी है, लेकिन हजारों कविताएं बाबा के प्यार में आपने लिखी है, कुछ तो कि हमारा भी प्यार उससे और बढ़ जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही, बल नहीं आ रहे यहाँ कुछ भी।
वो सारी जो कविताएं लिखी है, मतलब वो ऐसी नहीं कि हमको वो याद है, वो एक फ्लो में लिखी गई है, तो वो कहाँ है बहुत सारी, वो तो हमको वो भी नहीं पता अभी, वो लिख दिया और छोड़ दिया, लिख दिया और छोड़ दिया कुछ। अभी तो पिछले 8 साल से कुछ भी नहीं लिखा, जब से ग्लोबल हॉस्पिटल में गए हैं एक ही बार लिखा था जब उत्तराखंड गए थे, वो त्रासदी हुई थी तो बस। वो इसमें होगी शायद, पर इंग्लिश में है। एक बता सकते हैं जो कि हमने MBBS में लिखी थी, और उसमें वो तो पता है ना।
मुझे खास कहा था वही वाले प्रश्न नहीं पूछना जो सब पूछते हैं, तो मैं वो नहीं पूछ रही हूँ।
पर आप तो ऐसे पूछ रहे हैं, ये तो हमने सोचा
कहा तो ये नहीं पूछना बाप समान कैसे बने, अमृत वेला शक्तिशाली कैसे हो। मैंने कहा ठीक है।
ये एक कविता लिखी थी हमने जिसमें सतयुग की झलक है, द किंग अ किंगडम ऑफ ड्रीम, ये लिखी है 25th October 1998, composed on 25th October 1998, sitting on the terrace of my room, छत पर बैठकर। इसमें अभी हम जब देखते हैं तो इसमें वो झलक है कि अभी हमको यहाँ ना तो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है, ना तो किसी शास्त्र का ज्ञान है। अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं MBBS की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तब ये लिखा है। अंडर द शेड ऑफ फैंसी, अर्थात थोड़ा सा हिंदी में बताएंगे, अंडर द शेड ऑफ फैंसी मतलब इमेजिनेशन की छाया के अंदर, ऑन द लैंड ऑफ वॉन्डरिंग माइंड, भटकते हुए मन की भूमि पर, जस्ट टचिंग द रिवर ऑफ इन्फेंसी, एक नदी बह रही है बचपन की, उसको जस्ट टच करते हुए, अ किंगडम ऑफ ड्रीम्स यू विल फाइंड, ऑल ओवर द यूनिवर्स ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, इन दैट ब्यूटिफुल ड्रीम लैंड देर आर ट्रीज ऑफ स्वीट्स एंड क्रीम्स, उस स्वप्न जगत में झाड़ है किसके, स्वीट्स और क्रीम, लाइक दैट एलिस लॉस्ट इन हर वंडरलैंड, यू विल सी लिटिल फेरीज नियर द मिल्क स्ट्रीम्स, वहां दूध के झरने बह रहे हैं, हु सीम टू इमिट अनसीन फ्रैग्रेंट बीम्स, उसमें से किरने निकल रही है, फ्रैग्रेंस निकल रहा है, विथ चॉकलेट्स their houses are filled up of toffees, their windows are made, and for everyone their doors are unsealed, free to enjoy the treasures therein laid, evergreen that would never fade, all surrounded by mountains which are all covered by snow, the fairyland blooms with joyous mountain, sparkles with merry and glow, and never to fun and place says no, with chubby chicks of dreams often blush, where chubby chicks of dream often blush, and their lips keeps on smiling on end, by which they say it seems that they are living, and just like a true friend often remain faithful, helpful and unstained. Here are no jealousy, is rajya mein koi jealousy nahi hai, or pride, anger or hatred, greed or any sin, na dobh hai na koi paap hai, with purest joy and peace on its side, on its side, this world has love as king and beauty as queen, as queen, though only in imagination is it really so unseen. Kya ye keval swapna mein ho sakta hai, kya aisa bhi rajya hai jahan koi ghrina nahi, koi nafrat nahi, keval prem hai aur saundarya hai. Ye tab likha hua hai jab humko brahma kumaris ka to gyan chodo, shastra, bhagwan, kisi ka bhi pata nahi tha, parantu ye us avastha mein जैसे कि वो एक झलक है आत्मा है, जैसे रही हुई है ना, ब्राह्मण आत्मा तो रही है, तो स्मृतियां तो होगी, उस स्मृतियों के आधार से ये निकली थी शायद।
तो आप देख सकते हैं कि ज्ञान से पहले भी मन और बुद्धि कितनी पवित्र थी, स्वच्छ थी। बाबा को ऐसे स्वच्छ बच्चे चाहिए होते हैं अपना कार्य करने के लिए। दादी गुलजार को हम देखें, दादी जानकी को देखें, वो स्वच्छता थी। नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि, मैं कई बार कहती हूं कि अगर हमको किसी को फॉरेन कंट्री भेजना हो एक कंपनी की ब्रांच खोलने, तो पहली चीज तो ये देखेंगे ना उसको लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है। ऐसे को भेजेंगे क्या जिसको भाषा ही नहीं आती है? और बाबा ने किसको भेजा? सच्चे दिल पर साहेब राजे। सच्चाई है तो बाकी कार्य वो अपने आप करा लेता है। आप वहां बैठे और आपको ये निश्चय तो हो गया कि यही भगवान है जिसको आप ढूंढ रहे थे, लेकिन जो निश्चय है वो एक धक से हो जाता है कि निश्चय भी हमारा जैसे जर्नी में हम बढ़ते जाते हैं आगे, साल साल बढ़ते हैं, तो वो निश्चय भी बढ़ता है कि निश्चय एक ही बार हो जाता है? क्योंकि जितना निश्चय उतना नशा। तो निश्चय का आधार क्या है और ये निश्चय ग्रेजुअली इंक्रीज होता है?
दोनों ही बातें सत्य है। निश्चय अगर हम अपनी बात कहें तो किसी ने आकर हमको नहीं बताया कि ये भगवान है। अगर बताया होता तो हम शायद मानते भी नहीं थे, तर्क करते, वितर्क करते, उसके साथ डिबेट करते, यह ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। निश्चय बहुत ही सूक्ष्म प्रोसेस है जहां पर हृदय एकदम हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और एक तो ये निश्चय, क्योंकि निश्चय की बहुत बड़ी परिभाषा है तो हम ये ज्यादा कहेंगे कि वो ग्रेजुअल है और धीरे धीरे होते जाता है। क्योंकि बाबा ने जब निश्चय कहा तो खाली यही निश्चय नहीं कि ये भगवान है, अपने आप पर भी निश्चय, भगवान पर भी निश्चय। ड्रामा, ड्रामा का ज्ञान तो हमको पहले था ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं था ड्रामा भी होता है। तो वो ड्रामा के निश्चय वाली पॉइंट खाली वो निश्चय हो गया कि ये भगवान है, इसमें तो आई नहीं। निश्चय ज्ञान में निश्चय, सृष्टि चक्र में निश्चय, अपने पार्ट में निश्चय। निश्चय बहुत बड़ी चीज है, विशाल चीज है। तो दोनों ही बातें सही है, एक धक से भी हो जाता है और फिर उसकी ग्रोथ होती है, जैसे छोटा पौधा है निश्चय और फिर वो धीरे 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 बढ़ता है और उसमें वो परिपक्व हो जाता है। जिसका निश्चय एकदम छोटा है वो हिल सकता है, परंतु जो वटवृक्ष बन गया है वो पेड़, उसको कोई नहीं हिला सकता है फिर, क्योंकि स्वयं में भी निश्चय है कि मैं कौन हूं, उसमें भी निश्चय है, उसके सुनाए हुए ज्ञान में, अनुभवों में, इस ब्राह्मण परिवार में निश्चय है। हम लोगों ने अपने ग्रुप में एक बार निश्चय की पॉइंट्स निकाली थी ढेर सारी, किस किस में निश्चय होना चाहिए। तीन चार तो मुख्य है, स्वयं में, बाप में, ड्रामा में, ये तीन आता है, पर इसके अतिरिक्त तो और कौन से निश्चय होने चाहिए। कितनी बार बाबा ने कहा पत्र लिखो निश्चय, ये निश्चय करो कि ब्रह्मा तन में भगवान आया है, ये निश्चय करो कि जो सुनाया जा रहा है ये परमात्मा ज्ञान है, ये निश्चय करो कि इस ज्ञान के ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है, ये निश्चय करो कि सूक्ष्म वतन अब है, ये निश्चय करो कि तुम ही देवी देवता थे, ये निश्चय करो कि इस द्वापर से जिनकी पूजा अब तक हो रही हो तुम हो, पांच स्वरूपों में निश्चय, ये निश्चय कि मैं सतयुगी, मैं फरिश्ता बनने वाला हूं। तो निश्चय तो बहुत बड़ा है। तो एक धक से हुआ और फिर उसके बाद में उसकी वो जो बीज है फिर वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और उसको बढ़ाते ही जाना है हर दिन अपने निश्चय को, जब तक वो वटवृक्ष नहीं बन जाता। फिर उसको कितना भी कोई हिलाए, ब्रह्मा भी आकर कह दे कि मैंने ये जो ज्ञान सुनाया ना ये गलत है, मेरे तन में भगवान ही नहीं आया, हम कहेंगे आपके ही तन में आया, ये निश्चय।
बाबा फिर ये भी कहता है कि जितना निश्चय है उतना नशा चढ़ता है। दादी जान के एक बार सुना रही थी कि अचानक हिस्ट्री हॉल की खिड़की खोली तो देखा कि ब्रह्मा बाबा अंदर नशे में डांस कर रहा है। ऐसा होता है आपके साथ कभी?
वो तब हुआ था जब हम नए नए आए थे तो अकेले रहते थे कमरे में और एक 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 गीत जो नए नए सुनते थे, बाप रे इतना नशा, इतना नशा कि उसको क्या करे, इतना भयंकर नशा था और किसी को बताया नहीं था। किसको बताए, भगवान मिला वहां पर। हम जब ज्ञान में आए और हमारा पहला दिन था और फिर कुछ दिनों के बाद किसी ने पूछा ज्ञान में कब से हो, तो हमने कहा एक महीने से, युक्ति युक्त एक ही दिन था। तो उसने कहा एक महीने में यहां पहुंच गए, तो हम डर गए कहीं हमको भेज ना दे। फिर अगली बार किसी ने पूछा कब से ज्ञान में, हमने कहा छह मास से, तो उसने कहा छह मास में मधु बना गए तुम, हमने फिर अगली बार उसको एक साल कर दिया तो वो जो समय था उस समय जब आए और किसको बताए, वो हमको याद है हॉस्पिटल से मधुबन पीछे का रास्ता है, उसमें जब हम जाते थे तो ऐसा नशा रहता था बहुत, मतलब वो जब बाबा की कुटिया में वहां बैठते थे अंदर तो उसमें से ऐसा प्रकाश आता था, हम कहते थे स्टॉप स्टॉप, उठ जाते थे वहां से, शरीर है ही नहीं जैसे, इतना भयंकर नशा उसका कोई वर्णन ही नहीं है। वो जो बाबा का गीत था, जब पहली बार सुना ऐसा लगा किसी ने एक छुरा इधर डाल दिया है। शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, गीत है ना, शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, लाखों तूफान दुनिया के देखो देखो उठ गए। वो गीत जैसे कि टर्निंग पॉइंट बन गया था। जो गीत जो हमने सुना था वो अब भी जब गीत बजता है तो तुरंत शरीर जैसे हो जाते और सीधा वो स्मृतियां जाग जाती है उस समय की। उस गीत में जैसे कि इतनी यादें भरी है, समाई हुई है।
बचपन के दिन चलते ही रहे, हमारी तो यात्रा में बड़ा ऊपर और नीचे, पीक और वैली चलता है।
वो तो हमारी भी होता है।
बड़ा अच्छा लगा सुन के। क्या हमें लगा शायद आपकी जर्नी में सिर्फ ऊपर 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 ही है। तो क्या पीक और वैली की जर्नी रहती है, और कैसे फिर कैसे अपने को वापस उन दिनों में ले जाते हैं? नशा स्थाई रहता है कि कम होता है, और फिर कैसे चढ़ाते हैं?
हमारा जो जॉब है, जो प्रोफेशन है, जो सेवा है, जो कार्य है, बहुत ज्यादा हलचल वाली है। एक दिन में 50-60 पेशेंट, कभी 60, कभी 70, कभी 80। आईसीयू में 24 घंटे इमरजेंसी, वार्ड में पेशेंट्स, और जो पेशेंट आ रहे हैं वो कोई बाहर के होते, उनके अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, तो वो अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो और वहां पर प्रोफेशनल एक्सेलेंस आवश्यकता ज्यादा है। मतलब जो भी पेशेंट आए, आई मस्ट नो द लेटेस्ट अपडेट्स उसकी ट्रीटमेंट के विषय में जो भी है। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मुझे तो योग और ज्ञान में, मुझे याद है एक अव्यक्त बाप दादा का मिलन हो रहा था, डायमंड हॉल में बैठे थे, सतीश गुप्ता सर सामने बैठे थे, उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट बताया एक पेशेंट का, वंदना माता संगम भवन के, उन्होंने कहा वंदना माता ट्रॉमा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो शी इज नॉट गुड, ये उसका एबीजी है, ब्लड गैसेस। वो रिपोर्ट वहीं पर बताया, बाबा सामने, मिलन चालू है और इधर ये चालू है कि दिस इज द रिपोर्ट। आई सेड दिस इज हॉरिबल, उसमें PCO2 100 के ऊपर जा रहा है, दिस पेशेंट इमीडिएटली शुड बी पुट ऑन वेंटिलेटर। पर हम उसमें क्यों इंटरफियर करें? ट्रॉमा का मैनेजमेंट अलग है, ग्लोबल का मैनेजमेंट अलग है, उधर के उनके डॉक्टर हैं, हमारे हम लोग ऊपर का देखते हैं, और सामने बाबा आ रहे हैं, बाबा बैठे हुए हैं और मुरली चालू है। तो उन्होंने कहा तुम जाओगे क्या? हमने कहा हमने कहा ठीक है, और बाबा से कहा बाबा हम छोड़ रहे हैं तुमको, और हम गए वहां और देखा तो वो माता जी, शी वॉज रियली वेरी ब्रेथलेस। फटाफट वहां सब कुछ किया, उसको वेंटिलेटर पे डाला, सेंट्रल लाइन, ये किया वो किया, वो सब कुछ किया। जब पहुंचे तब तक तो बाबा चले गए थे इधर, बट शी वॉज सेव्ड, नहीं तो विद इन फ्यू मिनट्स शी वॉज अबाउट टू गो। तो हमारा ऐसा है कि जब कर्तव्य पुकारे तो सब कुछ गॉन है, बाबा मिलन फिर क्लासेस सब एक तरफ, कर्तव्य परम है। वो जब पुकारे तो हमको फिर ये सब अगर छोड़ना पड़े छोड़ दिए। तो अप एंड डाउन तो इस तरह का होता है कि एक तरफ ये इच्छा कि यहां का कुछ नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ हम वो सब कर रहे हैं जो कि संसार के लोग, जैसे डॉक्टर का जो प्रोफेशन है उस आधार से कर रहे हैं। एक इच्छा रहती है कि सबसे हम मुक्त हो जाए, जैसे किसी ने हमको बांध के रखा है यहां पर चेयर पर, और ये हमारा काम ही नहीं है, इसके लिए तो हम आए ही नहीं है। हमारा काम है टू अवेकन, जगाने के लिए। और ये छोड़कर ये क्या हम कर रहे हैं? पर फिर दूसरा भी पहलू है, क्योंकि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो दूर दूर की बहनें आती है, मधुबन निवासी सेवाधारी माताएं हैं, और इनकी सेवा कर बहुत खुशी भी होती है, और मुख्य रूप से दादी जानकी जी, मेरा डॉक्टर मेरा डॉक्टर मेरा डॉक्टर ऐसे करती कहती रहती दादी। तो वो भी एक जैसे सोचते हैं चलो ठीक है डॉक्टर है तो ये थोड़े फायदे भी तो है, नहीं तो ये डॉक्टर से तो एकदम ही वैराग है, जैसे कुछ है ही नहीं यहां पे, हम अपनी केवल 10% एनर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, पेशेंट देखना और बाकी एनर्जी तो चिंतन में और ज्ञान में और जो सेवाएं करनी है और जो आत्माओं को जगाना है वो सब में लगी हुई है। तो हलचल जो है वो इस प्रोफेशन से रिलेटेड है, बाकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हमको ना के बराबर है, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें एक्सपेक्टेशन, जैसे एक बार एक पेशेंट आया, एक वहां तो आबू में सैटरडे संडे सब ड्रंकर्ड्स घूमने फिरने आते हैं लोग, बहुत पी लेते हैं। एक लड़का यंग 20 साल का बहुत पी लिया और उसके दोस्त भी पिए हुए, वो तो एकदम बेहोश, और वो बेटे को उस अपने दोस्त को लेके आए, किससे पूछे हिस्ट्री, वो जो उसके जो रिश्तेदार थे वो भी सब धुत नशे में। तो वो लड़के को लेके आए तो उसका ट्रीटमेंट चालू किया, और उसके पिताजी जो थे वो बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर थे कहां पे, और मेरे से हमसे बात कराई, और वो इतनी गालियां देने लगे हमको, क्या समझते हो तुम लोग क्यों मेरे बेटे को एडमिट किया, वो उसको क्या बताऊं तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है इधर, वो तो सोच रहे मेरा बेटा ऐसा बहुत अच्छा है, तुम लोगों ने तुम ब्रह्मा कुमारी सब ऐसा करते हो वैसा करते हो, अरे बाप रे बाप। मैं आ रहा हूं अभी तुम लोगों के खिलाफ सब कुछ करने, अरे सुनो तो। तो हमने कुछ भी नहीं बोला, हमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और फिर अमृत वेला उस आत्मा को इमर्ज किया और संकल्प किया कि जैसे ही आत्मा आएगी वो आएंगी अपनी, वो कहा मैं अपनी पूरी टीम के साथ आ रहा हूं पुलिस की अपने बेटे को लेके जाने के लिए, तो आओ। तो हमने आत्मा को बहुत सकाश दी सुबह सुबह, और दूसरे दिन वो आया और चुपचाप लेके चला गया, मिला भी नहीं हमसे क्योंकि संडे था, तो हम तो आया और चुपचाप चला गया, कुछ नहीं कहा, शांत हो गया, शायद सकाश से शांत हुआ होगा क्योंकि बोलने का अवसर ही नहीं दे रहा, इतनी गालियां बाप रे हमने तो कभी नहीं सुनी इतनी। तो प्रोफेशन से रिलेटेड अप एंड डाउन होता है, पर अभी हम देखते हैं कुछ मास से उसका बहुत कम असर हम पे हो रहा है। पहले था पर अब 50 पेशेंट 100 पेशेंट देखे, आईसीयू का राउंड लिया, और जैसे हॉस्पिटल से निकले वो खत्म हो गया, और रात में क्लास करानी है एकांत में एकलव्य। तो हृदय सागर मंथन, और वो क्लास कराने से पहले तक फोन चालू है पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, वो चल रहा है जैसे अपने आप हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है उधर और हमारा ये चालू है इधर।
अच्छा, व्हाइट ड्रेस पहनकर और बैच लगाकर कोई पेपर आता है? आप कल कह रहे थे कि
पेपर यही आते हैं हमारे पास, जो हमारे पेशेंट थे सब बीके ही है बहुत सारे,
क्योंकि ब्राह्मणों
को तो बहुत पेपर आते हैं, बहुत सारे डिमांड्स उनकी बहुत ज्यादा होती है। जैसे एक उदाहरण देंगे, एक वीआईपी भाई आया, उसने कहा थोड़ा बुखार जैसा है, उसके साथ उसके 10-12 साथी। तो बुखार तो टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर तो नहीं है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब एक बार एडमिट कर दो आप, ये एक जबरदस्ती करते हैं। एडमिट की तो जरूरत नहीं है। नहीं नहीं कर ही दो, एक बार सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे। अभी अभी तो कुछ दिन पहले ही सब अहमदाबाद से करके आए, सब तो ठीक लग रहा है। नहीं नहीं यहाँ कल से ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा एडमिट करती हूँ। तो वीआईपी रूम, डिलक्स रूम और फिर वो पूरे उसके साथी और वो सब राउंड लेने गए, रिपोर्ट देंगे। डॉक्टर साहब रिपोर्ट में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। उदासी कुछ आना चाहिए। नहीं ये एसी काम नहीं कर रहा है, इसको जरा ठीक करो। हाँ हमने कहा ठीक है, बोलते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट। और उसी टाइम पे जब उसको एडमिट किया, एक दूसरी माता आई मधुबन से, पांडव भवन की सेवाधारी माता, उसको देखा 104 डिग्री बुखार। हमने कहा माता जी भर्ती होना पड़ेगा। वो कहती नहीं नहीं बोझ होगा मेरे ऊपर, मैं बाबा की सेवा के लिए आई हूं, यहां भर्ती हो जाओ क्या, दवाई दे दो मैं तो जा रही हूं। मैंने कहा नहीं तुमको भर्ती होना। वो कहती है मेरे पास केवल 130 रुपए है, वो भी जाने की रिटर्न टिकट है कॉमन बुगी की, उसके ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं। हमने कहा तुमको भर्ती होना है, हम तुम्हारा सब फ्री करेंगे। तो उसको जबरदस्ती एडमिट कर दिया, ऊपर उस भाई को एडमिट किया, नीचे जनरल वार्ड में माता को एडमिट किया। ऊपर शाम को गए तो सारे रिपोर्ट नॉर्मल, और वो भाई कहता है मेरा एक बार सोनोग्राफी भी कर लो। और ये एसी का देखो ठीक नहीं चल रहा है, बेड बहुत सख्त है, इसको भी मैं बात करता हूं प्रताप भाई से करो। और नीचे गए फिर राउंड लेने, तो माता जी मुरली पड़ रही है, ऊपर टीवी चालू है नीचे माता जी मुरली पड़ रही है, वहां पे वो हीटर भी नहीं, इतनी एसी मतलब वो हीटर वाला ऊपर चालू नहीं था, ठंड के दिन थे। और माता जी बिल्कुल ऐसी कांप रही। अभी बुखार थोड़ा कम हुआ है, 102 104 था, और वो माता जी कहते अभी मैं ठीक हूं मुझे छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरी सेवा रही हुई है, मैं यहां सेवा करने आई हूं, ये सब करने थोड़ी आई हूं, मुझे छुट्टी दे दो। और उसके रिपोर्ट दिखे सब गड़बड़। हमने कहा सोनोग्राफी, वो कहती प्लीज मेरा सोनोग्राफी कुछ मत करना, मुझे छुट्टी चाहिए। और वो मुरली पड़ रही है और बाबा के मेरे ऊपर बोझ चढ़ेगा। दूसरे दिन ऊपर भाई नीचे माता वो कहता है मेरा ये टेस्ट भी करो, वो भी कर दिए। वो कहता है मेरा ऐसा ऐसा करो, वो भी कर लिए। नीचे दूसरे दिन सोनोग्राफी हुई, माता कहती अब मैं नहीं रहूंगी मुझे जाना है, जो और करना है दवाई दे दो। और वो छुट्टी कर दिया, बाद में कभी आई नहीं कहां चली गई पता नहीं। और ये भाई यहां से छुट्टी हुई, फिर 3 दिन बाद कहा कि अब छुट्टी कर सकते। नहीं नहीं अभी तो कमजोरी तो लभी भी लग रही है तो रहो 7 दिन। 7 दिन के बाद छुट्टी की, छुट्टी करने के बाद में फिर अहमदाबाद गए, वहां से रिपीट सारा टेस्ट किया और बहुत सारी जांचें करके आए। और फिर दिखाने लगा कि ये सब एक बार वहां से भी करके आ गए, कुछ है क्या, सब नॉर्मल। ये इस तरह के ब्राह्मण आत्माओं के पेपर है तो एक बात हम देखते हैं माताओं की, निश्चय की, जो गरीब माता है वहां पांडव भवन में सेवा करने आती है, कितनी उनमें लगन होती है और कितना संघर्ष घर में करके आती है। बहुत बहुत उनमें लगन होती है, कुछ उनको पता नहीं, खाली अपनी सेवा करना बस, और प्यार बाबा से। हम जानबूझ के उनके पूछते हैं कि आज की मुरली की पॉइंट बताओ, वो कहते हैं अरे बाबा एक भी याद नहीं अगर भाई याद भी कुछ नहीं रहता है उनको, मुरली बहुत है। पर निश्चय ऐसा है ना बाबा के ऊपर, बाप रे बड़ों बड़ों को हिला देगी। तो हमको तो पेपर ज्यादा है, परिवार से ही है।
आप दादी जानकी के डॉक्टर हैं, इससे बड़ा भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता। हम सब बाबा को याद करते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, लेकिन बाबा दादी से बहुत प्यार करता है। हम बाबा को याद करते हैं, बाबा दादी को याद करता है, दादी भी हक जमाती है बाबा पर आप उस दादी के डॉक्टर हैं। बड़े नजदीक से आपने दादी को देखा है, और सिर्फ उसी समय नहीं देखा है जब सब कुछ ठीक था, सबसे कठिन पेपर शरीर का है, तो आपने उनको कठिन परिस्थिति में देखा है, डिफिकल्ट पेपर में देखा है। हमें से तो बहुतों ने दादी को नजदीक से देखा ही नहीं है, तो थोड़ा सा हमको आप दादी का जो अनुभव है, जिन चीजों ने आपको प्रेरणा दी है, वो शेयर करें।
दादी हमेशा हमसे कहती है कि तुम जो यहां मुझे देखने आते हो ना, किस लिए आते हो पता है क्या? अपना भाग्य बनाने। मुझे ठीक करने नहीं, तुम्हारा भाग्य बन रहा है। एक बार हम दादी को देखने गए थे तो दादी सो रही थी, तो हमने सोचा नहीं उठाए, कोई नहीं था, वो सब उधर थे अंदर, तो हम बहुत समय बैठे रहे वहां पर दादी के पास चेयर डाल के और देख रहे थे। एक चीज जो ऑब्जर्व की, दादी ने आंख खोली और आंख खोलते ही स्माइल। क्या ऐसा हमारे साथ कभी होता है? बहुत कम। आंख खोली और स्माइल, अभी देखा भी नहीं सामने कौन है, आंख खोली और स्माइल। ये एक बहुत, और दादी ने ऐसी ऐसी बातें कही है हमसे, हमको तो याद भी नहीं, पर वो इतनी ऊंची बातें हैं कि हमको लगता था ये हम योग्य नहीं है, ये हमसे मत कहो ऐसा सब। इतनी ऐसी ऐसी बातें कह दी जो शायद किसी को पता नहीं, ना ही हमने कभी बताई। और जस्ट वो अंदर जैसे शक्ति के रूप में समा गई है। उसमें से एक बात है कि एक बार हम गए तो दादी बैठे थे, तो दादी ने कहा मेरा हाथ ले लो और सारी शक्ति छीन लो। डिफिकल्ट सिचुएशंस में हमको याद है, एक बार 2014 में या 13 में दादी को यहां मुंबई लेके आए थे, यहां का जो ग्लोबल हॉस्पिटल है परेल, वहां पर थे। वो इतना ब्लीडिंग चल रहा था, हीमोग्लोबिन 5 हो गया था, डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, सब कुछ करा लिया, एक एक टेस्ट दो दो बार करा लिया, कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो ब्लीडिंग हो कहां से रहा है, सब परेशान। डबल डबल टेस्ट कर रहे हैं, डबल डबल सब कुछ कर रहे हैं, कैप्सूल इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी 2 बार, इंडोस्कोपी 2 बार, कहां से आ रहा है और कहां से ब्लीड हो रहा है पता ही नहीं। पर हमने देखा दादी आईसीयू में है, उधर है, वो अपने एकदम संसार से जैसे परे की अवस्था में, उसको कुछ नहीं। यहां क्यों लेके आए, मुझे वापस ले चलो, मधुबन जाना है। मतलब वो जो दर्द तो बहुत था, पेट में दर्द, यहां दर्द, परंतु दादी की स्थिति बहुत पावरफुल थी। और हमको याद है कलीना एयरपोर्ट है यहां ना, कलीना एरिया है यहां पर कहीं सांता क्रूज के पास। तो लास्ट में हमने डिसाइड किया अब जो होगा हो जाए, जाने दो। जयंती बहन तक को भी बोल दिया एक बार, तो अहमदाबाद में दादी इतनी सीरियस थी कि बस अब लास्ट मोमेंट है, जा रही है बस। जयंती बहन को फोन कर दिया, एनी मोमेंट, बस ये लास्ट है अब। हम सोच रहे थे, दादी भी कह रही थी, दादी खुद ही बोल रही थी, वो ओम शांति भवन के अभी वो पार्ट पूरा हुआ, क्लासेस कराने का, कहीं जाने का, जस्ट लास्ट सेप्टिसीमिया, सेप्टिक शॉक, अंदर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन अब भी करना है, नहीं करो तो दादी नहीं बचेगी, और ये एज में ऑपरेशन करना, सो मेनी रिस्क, डेथ ऑन टेबल की कंसेंट चाहिए, डीओटी, डेथ ऑन टेबल मतलब ऑपरेशन करते करते डीओटी हो सकता है, डेथ हो सकती है, ये कंसेंट लेने। वो सारी मीटिंग्स हुई, क्या करें। और लास्ट में इधर भी, फिर लास्ट में हम सब लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया, जो होगा मधुबन में होने दो, शरीर अगर छोड़ेगी दादी तो मधुबन में, यहां नहीं, घर में, यही दादी की इच्छा है। और फिर वैसे ही हम दादी को कलीना एयरपोर्ट लेके गए, वहां पर पूरा वो जो वेटिंग रूम था उसमें भी ब्लीडिंग, और फिर एयरपोर्ट, फिर वो चार्टर्ड फ्लाइट, और वो फ्लाइट लेट हो गई, तो फिर वापस सांता क्रूज एयरपोर्ट आए, बड़ी वाली फ्लाइट, और उससे बैठ के अहमदाबाद, अहमदाबाद से हम वापस शांतिवन ले आए। वो जो कार थी उसमें पूरा ब्लड ही ब्लड जब पहुंचे शांतिवन। और फिर दूसरे दिन हमने सोचा अब जो करना है यही करेंगे, और दादी को फिर वहीं पर ब्लड चढ़ाया। और फिर ऐसे टाइम पे डराने वाले भी बहुत होते हैं ना, किसके रिस्पेक्ट ये कर रहे हो वगैरह, बहुत सारे बड़ों ये सब रहता है। तीसरा दिन, चौथा दिन और दादी ठीक होना चालू हो गई ठीक होना चालू हो गई और ब्लीडिंग बंद हो गया, हीमोग्लोबिन इंप्रूव होने लगा और फिर दादी को ये सेंटर लाइन थी। दादी ने मुझे फोन पे उसके मैसेजेस, ऑडियो मैसेज, अरे जल्दी आओ ये लाइन निकालो, यहां लाइन थी ना, ये बंधन से मुझे मुक्त करो। तो हम एक बार गए फिर और वो लाइन निकाली तो दादी ऐसे हाथ पकड़ के नाचने लगी पूरा कितना देर तक, ये लाइन निकाल दी ना, बहुत मेरा तुमने फायदा किया और एक बार याद है हम दिल्ली गए थे तो बनारसी भाई जी का फोन आया, अरे जल्दी आओ वहां क्या कर रहे हो, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। हमने कहा हम कॉन्फ्रेंस में है तो क्या करें, तो हमने सोचा छोड़ो कॉन्फ्रेंस का क्या करना है, तो कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़ दिया, फ्लाइट ली और आए और दूसरे दिन जब पहुंचे तो दादी डायमंड हॉल में क्लास करा रही है वो तो सब छोड़ गया है तो ये यहां अभी अभी ऐसा, अभी अभी ठीक, ये ऐसा ही चलता है दादी। रात में कितनी बार बाबा मिलन में जब लेके आए, एक बार तो ऐसा हुआ कि दादी पेट में बहुत दर्द, नहीं जाना है बाबा मिलन में, तो दादी को कह रहे दादी प्लीज थोड़ा नहीं, फिर गुलजार दादी को बुलाया, फिर गुलजार दादी और दोनों की उसकी तो डॉक्टर है ना गुलजार दादी, दादी जानती थी तो वो सब उनका चला हाथों में हाथ वगैरह और फिर स्टेज पर लाए और हम वहां ऑडियंस में बैठ के देखते थे, अरे ये आत्मा अभी दर्द में इतना चिल्ला रहे थे, क्या क्या हो रहा था वहां, और यहां स्टेज में दादी के हाथ में हाथ डाल के आ जाओ बाबा मिलने वो जो गीत बजता है आते समय कमाल है, तो ये सब अजीब ही अजीब है सब। रात में ऐसा लगता है बस अभी गए, और कभी कभी सुबह एक बार 4 बजे निकला ऊपर से सब अमृत वेला छोड़ो दादी ठीक नहीं है, और वहां पहुंचा तो दादी वो कुछ दूध पी रही है
भाई जो बात सुना रहे हैं ना ब्लीडिंग वाली जो बात है, मैं समझती दादी उस समय 98 की थी या हॉस्पिटल में एडमिट थी और जयंती बहन को भी बुला लिया था, तो ड्रामा में ऐसा भाग्य था कि हम लोग भी दादी को मिलने गए थे और दादी ने उस समय कहा, अंदर में जैसे उन्होंने कहा, डॉक्टर्स ने कह दिया था एनी मोमेंट, 98 थी अभी कितने साल के 5 साल पहले की बात है, तब डॉक्टर्स ने कहा एनी मोमेंट। तो जयंती बहन भी आ गए, तब दादी कहती है कोई किताब लिखे, आई नो हाउ टू लिव एंड आई नो हाउ टू डाई, वहां बैठ करके कहती है कोई किताब लिखे, मुझे मरना भी आता है और मुझे जीना भी आता है, कोई लिखे। और फिर अपने लंदन के ग्लोबल हाउस के नेविल भाई है तो उन्होंने दादी को कहा अच्छा ठीक है दादी मैं लिखूंगा, और दादी जब 100 के हुए तो वो जो दोनों बुक, एक उनके वाइफ लिज ने लिखी है सेंचुरी ऑफ सर्विस और एक उन्होंने लिखी आई नो हाउ टू लिव एंड आई नो हाउ टू डाई, और दोनों बुक्स जब दादी 100 साल की हुई थी तब पब्लिश हुई थी और रिलीज हुई थी, और अभी उसके बाद तो दादी जैसे मेडिकल साइंस के सामने भी एक चैलेंज के रूप में हो गई,
स्टैंडिंग चैलेंज है साइंस, क्योंकि अंदर जो कंडीशन है हार्ट सारा ब्लॉक है, कंप्लीट ट्रिपल वेसल डिसीज, ऐसा पेशेंट तो अब तक कब का चला जाना चाहिए था, ये तो चालू ही चालू है, और शी इज बिकमिंग यंग एवरीडे, जवानी जवान पीछे जा रही है पूरा ये तो शी इज रियली क्या है ये तो।
हम लोग कुछ समय पहले, कुछ मास पहले दादी के सामने बैठे थे और 2-3 दिन कंटिन्यूस मिलना हुआ, तो 2-3 दिन कंटिन्यूस मिलना होता था तो जयंती बहन साथ में थे तो कहा दादी पहचाना ये कल भी आई थी, कुछ याद नहीं दादी को क्योंकि दादी का ब्रेन श्रिंक होता जा रहा है, तो क्या कल मिले नहीं पहचाना, फिर मिले अगले दिन नहीं पहचाना, 3-4 दिन मिले नहीं पहचाना, तो 3-4 दिन में क्या हो रहा है दादी को कुछ याद नहीं। और फिर जब हम बैठ के कभी चिटचाट करते थे तो दादी कहती थी वो क्लिफ्टन पर जब बाबा आता था ना, वो बाबा जब कराची में था ना, मना दादी को कब की बात याद है,
किसने 2 किलो चावल दिए थे और किसने 1 किलो चीजें दी थी वो भी अभी याद है, सब याद है,
सब याद है, वो सब दादी को याद है, आज क्या हो रहा है वो याद नहीं है, ब्रेन श्रिंक हो रहा है, इस हफ्ते में कुछ याद नहीं है, लेकिन पीछे यज्ञ की एक एक सीन, बाबा ने कैसे बुलाया, रात को बाबा ले गया था कमरे में रखा, मैं सागर के किनारे खड़ी थी, बाबा ने कंधे पर आकर के हाथ रखा, बाबा ने कहा रे बच्ची तुम्हारा भाग्य और भविष्य दोनों बाप के हाथ में, याद है, सब याद है। तो बड़ा वंडरफुल दादी है और मैं समझती आज दादी लंदन से वापस मधुबन आई है, आप मिलेंगे ना जाकर,
जाते जाते
हमारी याद देंगे सबकी। दादी आपको पूछेगी कहाँ से आयो, फिर आप हम सबकी याद, हमारी शुभकामनाएं दादी तक पहुंचा देना।